और वो किस्सा कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए देखते हैं आयत नंबर 3 को। नहन नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस, ए नबी हम आपको सुनाने लगे हैं बेहतरीन किस्सा। कैसे, किसने सुनाया हमें? बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, इस कुरान के साथ जो हमने आपकी तरफ वही किया है। हालांकि वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, यकीनन आप इससे पहले ना वाकिफ थे, आपको ये नहीं पता था। ये है उस सवाल के जवाब में नाजिल होने वाली पहली आयत। क्या नबी ये सोचते हैं कि आपको ये किस्सा नहीं पता चलेगा, आपका इम्तिहान लेके ये आपको शर्मिंदा करने वाले थे? हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम सुनाएंगे। यहाँ से पहली बात तो ये पता चलती है कि दुनिया का हर ड्रामा या किस्सा कहानी किसी का लिखा होता है। टीवी पे भी ड्रामे आते हैं तो एंड पे उसके बाद आता है ये किसने लिखा कहानी, किसने लिखी, कंपोज किसने किया, पिक्चराइजेशन की। अल्लाह ने इस पूरे किस्से की ईच एंड एवरीथिंग अपनी तरफ ले ली। सॉरी, इसके अंदर फिक्शन नहीं है, है रोमांस, लेकिन ये वो रोमांस नहीं है जो जवानों को ख़राब करे। आप देखेंगे कि इसमें इतने रोमांटिक सीन है इस किस्से में, लेकिन कोई बलगरपन नहीं है। फिल्मों में, ड्रामों में जो लोग किस्से कहानियाँ पढ़ते पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को हिदायत से दूर करने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने ये किस्सा बयान करके खूबसूरत तरीके से बता दिया कि कुरान का ये किस्सा बेहतरीन किस्सा है। अब सवाल पैदा होता है कि अहसनुल कसस कहा गया तो किस्सा किसको कहते हैं? क़ाफ़ स्वाद, स्वाद इसका रूट है। कस्सा या कुस्सु कहते हैं पीछे लगना, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। किस्सा वो होता है सुनने वाला, सुनाने वाले के पीछे पीछे चल रहा होता है। कभी आपने बच्चों को देखा कहानी सुनते हुए यूँ होते हैं, फिर क्यों, ऐसे ऐसे आंखें भी खुलती हैं, कान भी खुलते हैं, ये चीज़ है कस्सा या कुस्सू। ठीक है, पीछे लग जाना, इसी से फिर कसस उसकी जमा आ जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको अहसनुल कसस क्यों कहा गया? आप अहसनुल कसस का इंग्लिश या उर्दू तर्जमा क्या करें? बेस्ट ड्रामा, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट नावल, हाँ क्यों कहा गया? नंबर एक, चूंकि अल्लाह ने इसको अहसन कह दिया। दूसरी वजह, सारी कहानी एक ही जगह जमा हुई भी है, बिखरा हुआ नहीं है। फिर तीसरी बात है ऑर्डर है, तरतीब है। कोई भी ड्रामा देखें तो उसमें आपको तरतीब अच्छी लगती है ना। फिर सबसे ज्यादा सबक इसमें है, मॉरल्स हैं। फिर किस्सा यूसुफ को बेहतरीन क्यों कहा गया? क्योंकि यहूद और नसारा ने अपनी किताबों में तब्दीलियां की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर बहुत से धब्बे लगा दिए, नौज़ुबिल्लाह स्कैंडल्स उठाए हुए थे। इस किस्से ने उनकी हकीकत खोल दी। यानी आप कह लीजिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी जो लोगों ने करनी चाहिए, जो उनके ऊपर कुछ इस तरह की ब्लेमिंग करवाई, इस किस्से ने उसको खोल दिया। फिर इसी तरह इसको सबसे बेहतरीन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दुनिया के बदतरीन और पुराने तरीन जुर्म यानी हसद किसने किया था सबसे पहले? इबलीस ने आदम से, फिर हाबील काबील का हुआ, हसद का इंजाम बताया गया, इसलिए अहसनुल कसस है। फिर इसीलिए इसको अहसनुल कसस इसलिए कहते हैं कि मुश्किल हालात में अल्लाह की मदद कैसे आती है, उसका किस्सा है। इसी तरह एक और वजह इसको अहसनुल कसस कहने की कि इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन बयान है इसमें, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाई गई है। फिर एक और इसकी वजह नफ्सियाती बुराइयों का जिक्र है, यानी जो इंसान अपने नफ्स के मोटा होने की वजह से बुराइयां करता है उन सब का जिक्र है, सरकशियों का राज है। और सबसे बढ़ के कह दें कि ये सच्चा किस्सा है। हमारे यहाँ ये बड़ी मारूफ बात है, सच्ची कहानियों से माखूज, हाँ तो सच्ची कहानी सबको अच्छी लगती है। कुरान पाक ने मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए हैं लोगों को सबक देने के लिए, कभी कायनात पे गौर करवाया, कभी आखिरत का डर और कभी किस्से। तो आयात कसस कुरान का हिस्सा है, मकसद क्या है? नसीहत। यहाँ से एक बात बता दी गई कि कहानी सुन सकते हो, लेकिन नंबर एक झूठी ना हो और नंबर दो उससे झूठ ना फैले। आमतौर पर दुनियावी कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, लेकिन यहाँ इस कहानी की बुनियाद वही इलाही है, सच्चा किस्सा है। और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स आप खुद भी जमा कर सकते हैं कि इस किस्से में बेहतरीन बात क्या है। फिर इसके बाद अब अगली बात ये आ जाती है कि इस किस्से को बयान करने से पहले अल्लाह ने ये क्यों कहा कि आप मिनल गाफिलीन थे? नाउज़ुबिल्लाह, गाफिल से मुराद या मिसगाइडेड नहीं है, मिसलेड नहीं है, बल्कि इससे मुराद है इनोसेंट, अनअवेयर। जैसे किसी को बात का पहले ना पता हो तो आप कहते हैं आपको इसका क्या पता था, ठीक है? तो यहाँ गफलत से मुराद बुरा नहीं, अच्छा मानी है। ये बिल्कुल वही अंदाज है जैसे सूरत दोहा में नबी सल्लम को कहा गया, ववजदक दुआलन फहदा, आप राह से भटके हुए थे, हमने उनको राह दिखाई। हाँ, इससे एक बात पता चल गई कि वही आने से पहले आपको मालूम नहीं था ये किस्सा। और इससे एक और बात भी पता चलती है कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, और जिसको गैब ना पता हो वो गाफिल नहीं होता बल्कि भोला होता है। एक और चीज़ जहाँ से पता चलती है कि कहानी सुनाकर तालीम देना बज़ाहर लगता है मॉडर्न तरीका है, तालीम है, स्टोरी टेलिंग है, जबकि कुरान ने कई साल पहले इसको अपनाया था। तो फिर इससे एक सवाल आपके जहनों में उभर रहा होगा कि अच्छा, फिर ड्रामे देख सकते हैं ना नसीहत के लिए, बड़े नसीहत आमोज ड्रामे हैं, तो वो ड्रामे में नसीहत है छटांग की और फैशन है मन का, और गुस्ताखियां हैं बच्चों की माँ बाप के आगे, और जो उससे हिडन मैसेजेस दिए जाते हैं वो आप सब जानते होंगे। एक सिस्टर ने बताया कि आपको पता है कि पहले जब हम कभी ड्रामे देखते थे, उनका जो ख्याल था, तो उस वक्त ये दिखाते थे कि लड़की कहीं और शादी करना चाहती है, माँ बाप कहीं और करते हैं, और बिल आखिर वो धक्के खा खू के उधर से जब वापस आती है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे माँ बाप का फैसला दुरुस्त था। ये थीम होता था ड्रामों का, यानी माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो ठीक सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आज के दौर में जो ड्रामे, अब मुझे नहीं पता जो उन्होंने देखे वही होंगे, इसलिए अगर आपको लगे ऐसा नहीं है तो माइंड ना करें, क्योंकि हम बहुत डिफेंसिव होते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि आज के दौर का थीम क्या है कि जो बच्चों का फैसला है ना वो ठीक है उसको मानो, और जिन माँ बाप ने बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनके रिश्ते कर दिए बाद में उनको फिर उससे पीछे करके तो वापस उन पे आना पड़ा। तो आप देखिए कि जैसे स्टेयरिंग को खामोशी से मोड़े ना तो गाड़ी में बैठे हुए को पता भी नहीं चलता, और गाड़ी पूरे यू टर्न से भी क्या बल्कि राउंड अबाउट से गुजर जाती है। इस तरह जो मीडिया होता है ना उसके हाथ में इस तरह के स्टेयरिंग होते हैं। तो ये सारी बातें बयान करके अब असल किस्सा सामने रखा जाएगा कि देखो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किस तरह से नसीहत के लिए रखा। अगली आयत पे हम देखेंगे, अब लम्हा लम्हा किस्सा है तो इसमें से ज़्यादा आयतों को हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे। और ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको भी साथ साथ बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पूरी कहानी पूरी होने के बाद सूरत के एंड पे बताएंगे। इस पे प्रेजेंटेशंस भी बहुत कुछ पहले के बने हुए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से भी, साथियों के भी, और इंशाल्लाह इसके अंदर से हम जो रह जाएगा उसको बाद में देखेंगे। अब चलते हैं किस्से पे, आप लिख लें आयत 4 से अब कहानी शुरू होती है। क्या? इस काल यूसुफ ली अभी ही, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी राईतु अहदा शरकौकबा वश्शम्स वल्कमर राईतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है 11 यानी 11 सितारों को और सूरज को और चांद को, मैंने इनको देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ज़रा यहाँ प्यारे से यूसुफ का प्यारा सा कलाम तो देखिए। बाप को बुलाने के लिए लफ्ज़ क्या होता है, या अब्बुन, या अब्बा, ये भी ठीक है। इस क्या है, रिमेंबर के मानों में, इंग्लिश में जैसे लफ्ज़ होता है ना रिमेंबर, इसी तरह अरबी में उस्कुरु होता है, तो उस्कुरु को मुख्तसिर कर दिया जाता है इस में, वैन के मानों में आ जाएगा। कब हुआ था ये किस्सा? यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना 19वीं सदी यानी 19th century बिफोर क्राइस्ट था, यानी 4000 साल पहले का ये किस्सा है। आज पुरानी से पुरानी फिल्म भी लोग जो देखते हैं वो कितनी को पुरानी होती है, और फिर आप जरा अपने बच्चों को दिखाएं 50 साल पुरानी फिल्म है तो हंसेंगे, कहेंगे हीरोइन को क्या हुआ, ये शर्मा क्यों रही हैं और मुंह में दुपट्टा क्यों डाल रही हैं और उछल क्यों रही हैं, ये देखो ये शादी के मौके पर रो क्यों रही हैं, कोई रोती हैं लड़कियाँ। यानी कितनी जल्दी हमारी पुरानी फिल्में और पुराने ड्रामे जो हैं वो अपडेटेड नहीं रहते, लेकिन ये 4000 पहले साल की कहानी, और आप देखेंगे आज भी आपको सुन के फ्रेश लगेगी। यूसुफ कौन थे? नाम मैंने आपको बता दिया, यूसुफ असफा से, हमजा सीन फा, इसका रूट होता है दुखी, सैड, सॉरोड, ठीक है। अल करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जो बाद में 12 نقیب بنے، بنی اسرائیل کے پیچھے پڑ چکے ہم سورت مائدہ میں، ٹھیک ہے، نقیباً ہسٹری بتائی جا رہی ہے. اب یہاں لفظ ان کا دیکھیے، لی ابی ہی یا ابدی، اس کو کہہ لیجئے یہ وہی لفظ ہے جیسے آپ کسی کو، ایک تو طریقہ ہے ابو ابا، اور کوئی کہتا ہے ابو جی. اب یہ ہماری زبان ہے نا، ایک لفظ ایک اور بھی ہوتا ہے ڈیڈ، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے پاپا، کون سا اچھا لگتا ہے؟ یا ابدی. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف سے جو یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی، اس میں یوسف علیہ السلام کا یہ کردار تھا کہ یہ بہت سافٹ اسپوکن تھے، لونگ تھے اور کیئرنگ تھے. یا ابتی، او مائی فادر، او مائی ڈیئر فادر، پیار سے بلانے کا انداز ہے. انی رائیتو، بے شک میں نے دیکھا. خالی لفظ رائیتو بھی ہوتا نا تو بات عربی کے حساب سے بالکل ٹھیک تھی. رائیتو کا معنی یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا یا مجھے دکھایا گیا، ٹھیک ہے. لیکن انی کہہ کر بے شک مجھے دکھایا گیا ہے، جھجک کا انداز ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کیا دیکھا؟ احد عشر کوکباً، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند. دوبارہ پھر ضرورت نہیں تھی رائی تو ہم کی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف کا ادب دیکھی اپنے باپ کے آگے، کہ اب آگے اپنی تعریف ہو رہی ہے نا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو سے میں نے دیکھا ہے خواب میں، مجھے اتنے چیزیں فرشتے سجدہ کر رہے تھے، مثال دے رہی ہوں. اور ایک انداز کیا ہے کہ ابا میں نے خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند. تھوڑا سا جھجکتے ہیں کہ کیا کہوں آگے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی جو اگلا رائی تم ہے نا، یہ جو ہے یہ جھجک کا ہے، ہیزیٹینٹ ہے. یہ ہے خوبصورت بات کرنے کا انداز، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعی خوبصورت ہے. دیکھیے شروع میں آپ نے بھی کہہ دیا کہ یوسف کا مطلب خوبصورت ہے، اور ہمارے کلچر میں یہ بڑا عام ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو حسن دیے تھے، ایک ظاہری حسن تھا. احادیث ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ حسین تھے. ایک موقع پہ آپ کی ایک زوجہ نے کہا کہ یوسف کو دیکھ کر جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اگر وہ آپ کو دیکھتی تو وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتی یا دل کاٹ لیتی. وہاں جہاں بات آئے کہ حدیث آئی تو سنا دوں گی، اللہ کے نبی ان سے بھی خوبصورت ہے. یہ تو تھا ظاہری اور جسمانی حسن جو اللہ نے دیا، لیکن یوسف کے پاس ایک باطنی حسن تھا جو آزمائشوں سے نکھرا. آج شکلوں پہ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کیا حسن ہے اس کا؟ اس نے خود بنایا خود کو، اور گوری چٹی چمکتی کھال، پتلی دبلی، جو بھی فیچرز کہہ لیں، کیا مول ہے اس کا اگر اس کے اندر حسن نہیں ہے؟ اگر اس بچی کو مل کے رہنا نہیں آتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، بڑے کی عزت نہیں ہے، چھوٹے کا پیار نہیں ہے، شوہر کی عزت نہیں ہے، تو وہ حسن کی دیوی کتنے دن پوجی جائے گی؟ چند مہینوں کے اندر اختلافات شروع ہوں گے. اصل حسن اندر ہوتا ہے. یوسف کے اندر حسن بہت تھا، لیکن ابھی باپ کی سیکیور گود میں تھے تو یہ حسن باہر نہیں آیا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا. یہاں سے اب آپ تھوڑا سا ایک سینٹیمنٹل سا نقطہ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کے اچھے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں نا، تو جتنا آپ ان کی بیوٹی کانشیس ہے نا، وہ لگتی کیسی ہے اور اس کی خوبصورتی کیسی ہے اور وہ پتلی ہے کہ موٹی ہے، اس کمپلیکس سے اپنے آپ کو نکال دیں، نکال دیجئے. ظاہری شکل و صورت چاند جیسی بھی ہوگی، لیکن وہ بچیاں نہیں بستی گھروں میں. کسی کا مرد یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اگر اس میں اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ قوام نہیں ہے، اگر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو کتنے دن گھر جائے گا؟ یہ ہمارے انڈو پاک کلچر کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بیوٹی کانشیس ہیں، ہم لکس کے غلام ہیں. ہم لڑکوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پری مل چاہیے، اور جب لڑکا دیکھیں اپنی بیٹی کے لیے تو کہتے ہیں گلفام شہزادہ ہو. کتنے دن اس چیز کی اہمیت رہتی ہے؟ شاید میرا حال ایک ہفتہ یا 10 دن، اس کے بعد یوزڈ ہو جاتا ہے بندہ. دوسرے کہہ دیں کہ آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کی بہو پیاری ہے، آپ کو وہ تب پیاری لگے گی جب وہ کھانے کا ٹرے سجا کے آپ کے سامنے پیش کرے گی، اور میاں صاحب کو بھی تبھی اچھی لگے گی جب اس کے بول میٹھے ہوں گے، جب وہ عزت کرنے والی ہوگی. تو اصل خوبصورتی جو ہوتی ہے نا، وہ اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ بہت زیادہ دکھتی ہے. अगली चीज़ इस किस्से से जो पता चलती है वो क्या है कि बच्चों का माँ बाप के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मुझे मौका मिला, अल्लाह ने दिया, पाकिस्तान में थी तो वहाँ साथियों ने फरमाइश की थी, तो मैंने सूरत यूसुफ बच्चों की तरबियत के एंगल में पढ़ाई हुई है। अब अल्लाह ने चाहा अगर आप लोग भी उसमें अगर अपना हिस्सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हम उसकी सीरीज़ बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह वो वाइडली स्प्रेड होंगी। जिन्होंने सुना था अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया हुआ है, क्योंकि उसमें हमने पूरी सूरत यूसुफ की बाकी चीज़ों को पीछे छोटा छोटा करके हाईलाइट करके हमने औलाद और माँ बाप का रिलेशन और ख़ास तौर पे इस सूरत में जवान बच्चों के साथ ताल्लुकात की क्या हदूद और क्या तरीके, इसको बहुत हाईलाइट किया था। इसलिए मैं यहाँ बहुत बात नहीं करूँगी क्योंकि ये तफसीर की क्लास है, वहाँ सिर्फ हमारा थीम ही ये था ना। लेकिन यहाँ आपको थोड़े से इशारे ज़रूर मिल जाएंगे कि यहाँ देखिए कि पहली बात ये पता चलती है कि औलाद अपने ख्वाब अपने माँ बाप के साथ शेयर करे। ये तो रात की नींद का ख्वाब था ना, और अमूमन आप देखिए कि बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी चीज़ें छुपाते हैं और दोस्तों से बयान करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी थे लेकिन एक मुशफिक बाप भी थे। उन्होंने अपने बच्चे को इतनी जुर्रत दी हुई थी कि तुम कोई ऐसी बात जो किसी और से ना कर सको मुझसे करो। तो अच्छे रिलेशनशिप यही होते हैं, आपकी बच्ची है या बच्चा है, उम्र का छोटा है या बड़ा है, आपसे तो वो छोटा ही रहेगा। जितना आज छोटा है 10 साल बाद भी उतना ही छोटा है आपसे। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे जो जवान होते हैं वो आपसे भी अब बराबर हो गए, या पहले आपसे अगर 15 साल छोटे थे तो अब शायद वो 5 साल छोटे हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो आपसे वो छोटे ही हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनको फालतू टुकड़ा समझ के ना रखने घर में। वो सिर्फ जिस्म के नहीं रूह के भी बच्चे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को ये जुर्रत दी हुई थी। फिर उसके बाद आप देखिए कि बच्चे ने बाप से जो बात की है ना, इसको समझ लें। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम हमारे पिछले पुराने मशरकी कल्चर में थी, अब्बा का नाम सुन के कमरे में छुप जाना, अम्मा से तो बात कोई नहीं करनी। कई माँ बात माँ को पता चलता था कि कोई पर्सनल मामला भी हो गया, और दोस्तों और सहेलियों से गुसर गुसर करना, ये दोनों एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ क्या है, वेस्ट, के बच्चों के साथ बैठ के गंदी चीज़ें भी देख लो और माँ बाप उनके सामने कोई लिहाज भी ना करें। बेस्ट थिंग क्या है, इसको समझें, जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद के साथ फ्रेंक हों लेकिन डिस्टेंस प्लीज। बाज़ दफ़ा फिर ये देखा गया कि अल्लाह माफ़ करे कि जब माँ बेटी की आपस में दोस्तियाँ होती हैं तो पर्सनल बातें माएँ अपनी बच्चों को बताती हैं, कैन यू बिलीव। यानी इवन बच्ची शादीशुदा भी हो, मैं तो नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकती कि बच्ची की शादी के बाद उसके साथ बैठकर ऐसी खुशगपियाँ लगाई जाएँ कि उसको फिर अपनी जवानी के किस्से और अपने अब्बा के साथ के मामले सुनाए जाएँ। देखिए रिश्तों का एक तकद्दस होता है, डिस्टेंस के साथ बच्चियों और बच्चों के साथ रहें। सेम थिंग चले माँ बेटी का तो रिश्ता मशहूर ही है, जो हमारे यहाँ जिसको आप कहना चाहिए कि ओवरलुक्ड थिंग या इग्नोर्ड थिंग है, वो है बाप और बेटे का रिश्ता। और वो बेटे जो जवान हो रहे हैं, देखिए जिस तरह बेटी की जिंदगी में चेंजेस आती है ना बलूगत के साथ, तो लड़कों की भी आती हैं, ये तो फैक्ट है। कैन यू बिलीव कि मुझे एक माँ ने कहा कि मेरा बच्चा जब जवान हुआ और मुझे उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, आखिर मुझे ही उसको ढके छुपे इस्लामिकली उसके सारे रूल बतानी पड़ी। क्यों भाई अब्बा? वो कहते मुझे उससे शर्म आती है। वजह क्या कि अब्बा जी ने एक रूप भी तो रखा हुआ है ना, सच्ची बात है। अब्बा को पता अगर मैं फ्रैंक हुआ तो इसने कहना प्लीज 50 पाउंड देना। अब्बा जी को ये भी तो बड़ा डर होता है ना, आज के बाद देख कि 10 का नोट निकल जाना है। तो अब्बा जी ये जो एक मनी मेकिंग मशीन बने हुए हैं ना आजकल हमारे कल्चर में, और बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, ये दुरुस्त तरीका नहीं। कहती मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं अपने यंग बेटे को बताऊं कि तुम पे क्या लाइबिलिटीज हैं। जाहिर है कि शरण कई चीजें सामने आती हैं, लेकिन कहती मेरे शोहर ने नहीं बताया, और फिर मैंने किस तरह से उसको बताया, क्या किया, अब नतीजा क्या होगा भला। सच्ची बात है कि बच्चा माँ से ज्यादा कुर्ब महसूस करेगा, अब्बा से दिल की बात ही नहीं होती, तो ये गलत चीज है। जिस तरह बच्चे को पॉटी ट्रेन करते हैं ना, या बचपन में उसको आपने छोटी छोटी बातें सिखा दी हैं तहारत की, बालिग होते हुए बच्चों को भी सिखाएं। लेकिन ये जुल्म ना करें कि 7-8 साल के बच्ची बच्चे को एक क्लासरूम में बिठाकर सेक्स की और बॉडी की सारी तस्वीरें और मूवीज दिखवा दें और कहें कि ये देखें। ये भी तो फिर एक्सट्रीम हो गई ना। आज बॉडी के नाम पर एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वहीं से 8-9 साल के बच्चे बच्चियों को फर्क पता चल जाता है कि लड़की और लड़के के जिस्म में फर्क क्या होता है। और फिर आप उसके अगले इफेक्ट से सोच सकते हैं कि किस तरह से शैतान क्या उनको मुतमईन करता होगा। यानी ये तो वो टॉपिक है, शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यंग बच्चों के साथ एक खास हद तक फ्रेंकनेस होनी चाहिए। आप उनसे हर बात पूछ सकें, वो आपसे ना पूछ सकें, ये क्राइटेरियन रख लें। आप उस्ताद है ना, शागिर्द आपसे कोई बात पूछता है, शागिर्दों के साथ आपका बेस्ट तरीका क्या कि वो अपने दिल की हर बात कर लें, दुख सुख सवाल जवाब मशवरा राय, लेकिन आपसे ना आगे पूछ सकें कि आप भी तो हमें बताएं, ये नहीं होनी चाहिए। बस इसको जहन में रखें, और आपको यहाँ हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ के किरदार से ये बात बहुत अच्छी तरह नज़र आएगी। कहते हैं इस वक्त उम्र क्या थी हज़रत यूसुफ़ की, दो राय मिलती हैं, मारूफ 7 साल के थे, कुछ कहते हैं कि 13 साल के थे। ठीक है, अच्छी तरबियत की निशानी है कि वो अपने ख्वाब अपने एम्बिशंस अपने वालदैन से शेयर करते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज के दौर में वालदैन की जगह दोस्तों ने ले ली, और ये क़यामत की अलामत है। शाम को सुनते ही है ना, आज भी है कुर्बे क़यामत की अलामत पढ़ी हमने, कि माँ बाप की जगह दोस्त आ जाएंगे और उनका हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि झिझक थी, बदतमीज़ नहीं थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि बाप ने इस ख्वाब को सुन के क्या कहा होगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ से आपको बाप का किरदार दिखेगा। या मैं आपको एक छोटा सा इशारा दे दूँ कि जैसे रोल मॉडल का लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत है ना, हज़रत याकूब की एक शान है। पूरे कुरान में कई मुकामात पर इनको एज अ फादर पेश किया गया। एक मिसाल आप लोग दे दें तो मैं खुश हो जाऊंगी। पढ़ चुके हैं, शुरू में ही पढ़ चुके हैं जी जी, शाबाश। इज़ा हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम पे मौत के असरात आए, तो क्या आपने बच्चों से पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? वहाँ आपको इनका किरदार दिख रहा है। अब इस पूरी सूरत में यहाँ इस बच्चे के साथ, और अब पूरी सूरत में आगे बिन्यामीन के साथ, फिर बाकी 10 बच्चों के साथ दिखेगा। तो किसी की बड़ी अच्छी बात है कि जिसने एज अ फादर रोल मॉडल लेना हो, वो हज़रत याकूब को ज़रूर पढ़े। ठीक है, तो हालांकि मज़मून है कि एक बुक भी है हज़रत इब्राहिम एज अ फादर, तो उसमें भी काफ़ी इस किस्म के इशारे मिलते हैं। तो बहरहाल, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब बयान किया, तो अब्बा जी की ज़रा बात देखिए कि वो इसके जवाब में क्या कहते हैं। आयत 5, काला कहने लगे, या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक। याकूब ने फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, अगर बेटे ने कहा था या बती, तो बाप क्या कह रहा है, या बुनैया। ये जो बुनैया की आखिरी या है ना छोटी सी, इसको हाईलाइट करें, ये प्यारे के लिए। बिन या इबन का लफ्ज आता है बेटे के लिए, लेकिन बुनैया अरबी जुबान का एक बड़ा खूबसूरत असूल है कि प्यार से चीज़ों को ये छोटी या के साथ डाल देते हैं, इसको बोलते हैं तस्गीर। इसका उर्दू में समझाऊँ तो शायद आसानी से बता दूँ। देखिए, एक लफ्ज़ होता है बच्चा और एक लफ्ज़ कहते हैं बचुंगड़ा, फ़र्क है दोनों में। ये जो बुनैया है ना, ये बचुंगड़ा है, और जो बिन होता तो वो बच्चा था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कह रहे हो मेरे बचुंगड़े, ये प्यार का अंदाज़ है, ये तस्गीर होती है और इससे मोहब्बत का एहसास होता है। ओ मेरे प्यारे बेटे, ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान ना करना, वरना क्या होगा, फयकीदु लका कईदा, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। क्योंकि इन्नश्शैतान लिलइंसानी अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। अब इस जुमले पे बहुत सारी बातें लोगों के जहनों में आती हैं, तो उसको भी देखते हैं। पहली बात देखिए कि हज़रत याकूब ने अपने बेटे को क्यों कहा कि तुम अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, इसलिए कि ख्वाब बड़ा अनयूजल था। ख्वाबों के बारे में जो हुक्म है वो क्या है कि अपना ख्वाब सिर्फ उन लोगों को सुनाएं जिन पर एतबार हो। अच्छा ख्वाब सुनाना चाहिए, उस पर मलक बात करेंगे, सिर्फ यहाँ हज़रत याकूब के जवाब को नोट कर लें। दूसरी बात ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बाप होने के साथ साथ नबी भी थे, और नबी साहिब फरासत होता, उसको लोगों को पढ़ना आता। हदीस में आता है, इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, वो अंदर से चीज़ों को ले आता है। तो हज़रत याकूब को अपने हर बच्चे का मिजाज समझ आता था। क्या आपको अपने बच्चों का मिजाज समझ आता है? किसी को देख के आप कहती हैं ये बड़ी भोली है, किसी को आप कहते हैं ये बड़ा चलाक है, ये बड़ा तेज़ है, ये खा जाता है भाई का भी हिस्सा, ये तो इसका भी कोई खा जाता है। जब एक आम इंसान हम जैसा अपने बच्चों के बारे में कुछ कह सकता है, तो हज़रत याकूब तो बाप थे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों के बारे में बदगुमानी नहीं की, बल्कि क्या कहा, फयकीदु लका कईदा, लफ्ज कैद को समझ लीजिए, दो लफ्ज लिख लें, एक होता है कैद और एक होता है मकर। मकर हमेशा बुरा होता है, बुरी चीज़, एडवर्स थिंग, नेगेटिविटी। और कैद अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, तदबीर के मानों में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगर अपने बच्चों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते ना, तो यहाँ कहते फमकरू, तुम्हारे ख़िलाफ़ मकर करेंगे। बल्कि उन्होंने कैद कहकर इशारा कर दिया कि हो सकता है कि कोई बात ऐसी उनके मुंह से निकल जाए जो कि तुम्हारे लिए नुकसान का सबब हो। ठीक है, क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है। ये अगला हिस्सा भाइयों के किरदार की मदद कर रहा है कि भाई तो अच्छे हैं लेकिन शैतान बुरा है। क्या पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम ने सारी बात शैतान पे डाल दी कि मेरे बच्चे, जब तुझे एक अच्छा ख्वाब नज़र आया, अल्लाह ने तुझे इशारा किया है, और यहाँ से हज़रत याकूब ये समझ गए थे कि मेरा ये बेटा नबी बनेगा, क्योंकि तीन नस्लों से तो पहले नबूवत चल रही थी, तो यहाँ ये इशारे मिले। और अक्सर अंबिया कराम की ज़िंदगी में आप देखेंगे, नबूवत से पहले ख्वाब, अल्लाह के नबी की भी नबूवत से पहले सच्चे ख्वाब थे। हज़रत आयशा की रिवायत हमें मिलती है कि आपको सच्चे ख्वाब आने लगते थे। तो लिहाजा ये बात करके बता दिया कि बेटा देखो, तुम अपना ख्वाब बताना ना किसी को, इनको शैतान दुश्मन है सबका। और इससे ये भी बात पता चलती है एक हदीस में कि अपने मामलात को खुफिया रख कर अपनी मदद करो। ये जो हम हर वक्त ही हवाइयाँ उड़ाते रहते हैं ना, अब ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया, फिर बाद में सफाइयाँ पेश करते हैं, मसनून अमल नहीं है। ना तो छुपाएं, ना झूठ बोलें, लेकिन बहुत हाईलाइट ना करें। नेमतों का ज़्यादा इजहार नहीं करना चाहिए। एक और हदीस में आता है, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाएगा। नेमत मिल रही थी ना बेटे को, और इशारा तो नबूवत का अगली आयत से भी पता चल रहा है, तो हज़रत याकूब चाहते थे कि दूसरे भाइयों को तो नहीं मिली ना, तो हसद होगा। यहाँ मैं आपको फिर दोबारा इशारा दूंगी उस पॉलिसी पे जो यहाँ हमेशा ही आपको हम डिस्करेज करते हैं, या समझे कि डिसअपॉइंटेड करते हैं कि आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैंने तो नहीं किया, अब कभी हो जाए तो हो जाता होगा कि आपको बुला के यहाँ फूल पेश किया जाए कि आपने आज बड़ा अच्छा काम किया, और आपको पेश किया जाए कि आपके 100 में से 100 नंबर हैं। नहीं किया ना, और कभी नहीं किया। सिर्फ आपकी क्लास के साथ ये जुल्म नहीं हो रहा, ये किसी जगह भी नहीं किया हमने, ना ऑनलाइन पे ना ऑन साइट पे, इल्ला ये कि परफेक्ट अटेंडेंस की बात हम ज़रूर बताते हैं, सबको दिखाते हैं, आपके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन पे सब देखेंगे अपनी अपनी कि कौन किसकी अच्छी परफेक्ट थी, और किसकी कौन जल्दी आया, कौन देर से आया। यानी जो इंसान के बस में चीज़ें हैं ना, उसकी तो बात है, लेकिन जो इंसान के खैर में नहीं, उसको नहीं हाईलाइट करते। हज़रत याकूब बेटे को क्यों समझा रहे हैं कि ख्वाब तो तुम्हें आया, ठीक है, अल्लाह ने दिया, तो बाकी भाइयों को तो नहीं आया। बाकी भाई ये कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा हम में क्या खूबी नहीं थी कि नहीं आया, वो तुमसे हसद करेंगे। यहाँ से अब बच्चों के आपस के ताल्लुकात, क्या बोलते हैं बच्चों को आपस में, जो बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग, उनके रिलेशंस। इसके लिए मैं आपको चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन पे जाके पेरेंटिंग ए टू सी का देखें, एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक सो 15-20 मिनट या इससे भी थोड़ा करीब होगा, इस पर हमने अपने पेरेंटिंग ए टू सी में बात की थी। बल्कि अब चंद दिन पहले ऑनलाइन पे लगा हुआ था, मैं सुन भी रही थी तो मुझे खुद कई चीज़ें भूल गई हुई थी। बच्चों के आपस में क्या ताल्लुकात हों, आज हमारे कल्चर में ये एक बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि ओवरलुक चीज़ है। माँ बाप खुद अपने बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। एक ही तारीफ जो उसमें खूबी है ना, माँ दूसरे के सामने उसकी बात करे, वो इतना तेज़ है तू क्यों सुस्त है, अच्छा भाई जो तेज़ है तो ज़रा वो ज़रा खड़ भी होगा, लड़ाका भी होगा, तो दूसरे वक्त पे जो दूसरा बच्चा जो है ना, उसको तू बुद्धू है, तू ढीला है, ये बड़ा एक्टिव है। यानी जिसकी जो खूबी होती है वो दूसरे के सामने, और जो दूसरे की खामी है वो उसके सामने पेश करके माएँ अक्सर बच्चों को लड़ाती हैं। फिर एक जुमला अक्सर माओं के मुँह से सुना है, खा लो नहीं तो भाई खा जाएगा। ये आप खुद अपने बच्चे को अपने बच्चे का दुश्मन बना रही हैं, उनको ना बताना ये होगा। तो ये बहुत एक बिग साइंटिफिक टॉपिक है, अपने बच्चों को कभी एक दूसरे के खिलाफ ना करें, उसके पीछे कभी दूसरे की बात ना करें। एक की सुन रहे हैं तो उसको के ठहर, जो मैं दूसरे को बुलाती हूँ तुम दोनों की सुनूंगी। एक की सुन के आप फैसला के फतवा दे के आ जाते हैं, होता पता कि एक बच्चा गलत काम भी कर आता है और आके रोता हुआ भी आपसे बात कर आता है, बाद में पता चलता है कि छेड़खानी इसी ने की थी पहले, आपकी भी हमदर्दियाँ ले ली और आपने दूसरे को जाके जोर से चपत मार दी, बाद में पता चला कि कसूर ये इसका था जो ज़्यादा तेज़ बना। तो खराबियाँ होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे। हम अपने बच्चों को खुद स्पॉइल कर देते हैं, ये रिएक्शन फिर सारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में रहते हैं। यकीन करें कि शख्सियतें किल हो जाती हैं, जिसको किसी को आप कहेंगे बिलडोज़र के नीचे आप क्रश कर देना, इस तरह बाज़ दफ़ा माएँ और बाप अपनी नासमझी से और दोनों तरह या तो बहुत दबा देते हैं या बहुत उभार देते हैं। ये बड़ा तेज़ है, ये फर्स्ट आता है, वो उसको फिर बहुत ही ज़्यादा बना के उसकी अना को बढ़ा देते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये काम कर रहे हैं। एक और वजह भी है इसकी कि मोमिन के ईमान का हिस्सा है कि दूसरे को गुनाहगार नहीं करता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे असबाब ही नहीं बनाना चाह रहे कि जिससे दूसरे बेटे गुनाहगार हो जाए। फिर इससे एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि जब भी कभी भाई बहनों में कोई झगड़ा होता है तो उसकी मेन वजह शैतान होता है। शैतान पे बात डालकर एक दूसरे से तवज्जो को हटा दिया गया।